ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद षष्ठ अध्याय अंतिम श्लोक संख्या 39। अवरोप्य गिरिं स्कंधात् सुपर्णः पततांबरः जयो जडान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः। शब्दार्थ अवरोप्य उतारकर, गिरिं पर्वत को, स्कंधात् अपने कंधे से, सुपर्ण गरुड़ जी, पततम सारे पक्षियों में, बरह सबसे महान, जजो गए, चलन्ते जहां जल है, उत्सृज्य रख कर, हरिणा भगवान द्वारा, सविसर्जित वह गरुड़ उस स्थान से चला गया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। तात्पर्य भगवान ने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने के आदेश दिया क्योंकि सर्पराज वासुकी, जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, वह बड़े बड़े सांप खा जाता है। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोज्य होगा, अतएव भगवान विष्णु ने गरुड़ से चले जाने को कहा, जिससे मथनी के रूप में मंदर पर्वत से समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को लाया जा सके। ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्थाएं हैं, दैववशात कुछ भी नहीं घटित होता। पक्षी की पीठ पर मंदर पर्वत उठाना और उसे सही सही रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वह देव हो या असुर, किंतु भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है। जैसा कि इस लीला से स्पष्ट है, भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने तथा उसके वाहन गरुड़ को सभी देवों और दानवों को ले जाने में भगवत कृपा से कोई कठिनाई नहीं हुई। भगवान जोगेश्वर कहलाते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, यदि वे चाहे तो किसी भी वस्तु को रुई से भी हल्का तथा ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते हैं। जो लोग भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते वे यही बता सकते हैं कि घटनाएं किस तरह घटित होती है। दैव अर्थात संयोग, जैसे शब्द का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की शरण लेते हैं। कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब भगवान द्वारा किया जाता है, जैसा कि स्वयं भगवान भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, मया धक्खेण प्रकृति सुयते सचराचरम। संसार में जितनी भी क्रिया या प्रतिक्रिया होती है वे भगवान की अध्यक्षता में होती है, लेकिन जब भगवान अद्भुत कार्य करते हैं तो असुरगण भगवान की शक्ति को नहीं समझते, अतः वे सोचते हैं कि वे आकस्मिक है। ओम अज्ञानंतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं निधं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत ये छठा अध्याय में आज अंतिम श्लोक आप चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यही बताया गया है कि संपूर्ण देवता समुदाय और असुर समुदाय मिल करके एक प्रोजेक्ट लिए हाथ में। ये प्रोजेक्ट था अमृत प्राप्ति करना समुद्र को मंथन करके, समुद्र को मथ करके अमृत पाना, ये था प्रोजेक्ट, जिस काम से आजीवन जन्मजात शत्रु भी आपस में मिल गए, कभी नहीं मिलते, हमेशा उनका मुंह स्वभाव दूसरा, उनके मुंह स्वभाव दूसरा, हर प्रकार से नेचर हर प्रकार से विपरीत होते हुए भी स्वार्थ के चले मिल गए, अमृत मिल जाएगा। मन में उनका क्या क्या विचार होगा, चलो बांट कर लेंगे कि छीन कर लेंगे, कुछ करेंगे, जो भी, अमृत तो मिले सही, बाद में देखा जाएगा, अभी तो मिल जाना चाहिए, मिलकर नहीं करने से अकेले में काम नहीं चलेगा। हम एक पार्टी भी ये काम कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों मिलकर के करेंगे। बहुत बड़ी भारी प्रोजेक्ट है, भारी काम है, इसलिए दोनों मिल गए। मिल करके जैसे जैसे उनको बताया गया था ऐसे ऐसे वो गए। सबसे पहले समुद्र तो भाई ठिकाना अपना जगह में है, कहीं उसको लेना देना नहीं था, लेकिन चर्निंग रॉड मथानी दंड लाना था, वो एक पर्वत था मंदराचल, उसी से मंथन किया जाएगा और रस्सी होगा वासुकी। तो चले गए, बोले उखाड़ के ले आएंगे समुद्र पर्वत को, ला करके डालेंगे, फिर सांप ला कर खींचेंगे, मंथन करेंगे। तो सब मिलकर के संपूर्ण देव शक्ति असुर शक्ति मिलकर के मंदराचल के पास के गए। बहुत भारी शक्तिशाली थे देवता असुर, और मिल करके खूब प्रयास करके खोल ताड़ करके उखाड़ दिए मंदराचल। आजकल के जो जेसीबी बुलडोजर वो तो सब फेल मारेगा, उनका एक एक हाथ एक एक अंगुली में इतने पार होता है देवताओं के। और सब लग गए, करोड़ों संख्या में लग गए, मिल करके मंदराचल को उखाड़ दिए। उखाड़ करके और उसको लेने के लिए चले और लेकर इतना भारी पर्वत था, सोने का पर्वत था, पूरा सलिड गोल्ड का पर्वत था और इतने भारी था भाई कितने बलवान क्यों ना हो, थक तो गए थे उसको खोलताड़ करने में, ढीला करने में। अब उठाकर टांग कर चलने के लिए प्रयास किए, थोड़े से भी एकाध किलोमीटर भी नहीं गए होंगे, संभाल नहीं पाए, बोले मर गए, उठा नहीं पाएंगे करे। तो अरे रुको रुको रुको, मैं नहीं सकूंगा, मैंने तुम पकड़ो तुम पकड़ो, आपस में झगड़ा झाटी, पकड़ पकड़ के छोड़ ही दी, और छोड़ी दी तो गिर पड़ा, इतना भारी बलान से बड़ा दिख, गिरा तो सही, कई हजारों असुरों कई हजार देवता पीस गए, इतने बड़े भारी है अब तो, कितो पीस तो गए जो मर गए मर गए, बाकी कितने इंजर्ड हो गए, फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर ना कान से फट फट गया। बोले प्रोजेक्ट से शुरुआत से ही हुआ, अब क्या होगा, कच्चू होगा क्या, लेकर जाएंगे तो उखाड़ ले ही नहीं पाए, उठाकर ले चलने में यही गड़बड़ हुआ, अब लेंगे उसको डालेंगे मंथन करेंगे काम नहीं, मतलब रोने लगे। अब पहाड़ के पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था कि जाकर एडमिट हो जाए ठीक ठाक, बैठ के रोने लगे, भगवान क्या कर दिए, क्या काम दे दिया हम लोग के मारे कर ले, लेकिन तो मर ही जाएंगे। तो भगवान ने देखे कि बेचारे परेशानी बड़े, भगवान वही लैंड कर गए, वही भगवान पहुंचे, अपने गाड़ी लेकर गए थे, अपने गाड़ी लेकर के वही पहुंचे, ऐसे पहुंचे भगवान को देख करके सब बोले सार देखिए ये हाल हो गया, आपने बताए थे ये मर गए, जो बचे उनका ये हाल है, हम तो हम कान पकड़े वो नहीं करेंगे, प्लीज हम कैसे फंसा दिया हमने। भगवान बोले कोई बात नहीं, इतना हिम्मत मत हारो, हो जाए ना ये चाहते थे कैसे, ये इतना भारी पर्वत हम कैसे लेकर जाएंगे यहाँ से क्षीर सागर तक, बाप रे बाप, ये एक आध किलोमीटर नहीं पाए हम। तो भगवान ने उनके सबके सामने देखते देखते एक हाथ में मध्यमा और अंगुष्ठा दो अंगुली में मंदर पर्वत पकड़े, पकड़ कर उठा के लेके गाड़ी के डिक्की में लोड कर दिए, गाड़ी मतलब गरुड़ जी थे उनके ऊपर में रख दिए, उनके गाड़ी तो निर्जीव नहीं है सजीव गाड़ी है, तो उसमें लाकर रख दिए। देवता लोग देखते वाह ऐसे रख दिए, उठा के एक हाथ में दो अंगुली में उठा के रख दिए, अब तो हिम्मत है, बोले चलेंगे, इतने सुबह हमारे सब मर के पड़े हैं क्या करें, उनका कुछ व्यवस्था, मतलब कोई व्यवस्था नहीं, एक झांकी सब देख लिए, आंख फेर लिए सबके ऊपर, भगवान की दृष्टि में अमृत है, अमृत दृष्टि से एक नजर देख लिए, किसी का टांग तोड़ गया था वो जुड़ गया, किसी का हार्ट फ्रैक्चर हुआ था वो भी जुड़ गया, किसके मरी गए थे पीसी गए थे सारे सब गया था वो भी ठीक हो गए, सब ठीक ठाक हो गए, बिल्कुल मरामत हो गए, ना कोई किसी को प्याज रिपीट कुछ डालना पड़ा, इंजेक्शन सिरिंज कुछ नहीं करना पड़ा, ना नर्स ना डॉक्टर ना कंपाउंडर किसी का जरूरत पड़ा, वो ही कोई ऑन द स्पॉट परफेक्ट, कोई घाव नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, भगवान किसको ठीक करना चाहे ये सब कुछ नहीं, दृष्टि मात्र ही सफिशेंट कर दिए ठीक ठाक, उनका और भरोसा बढ़ गया, तो काम बनेगा सर आप साथ में रहिए सर प्लीज प्लीज, हम बड़ा परेशान होता है सर छोड़ के मत जाइए सर, जब तक समझ हम आपको कुछ देंगे है ना, हम लोग जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं महान व्यक्ति को ही चाहते हैं कि अपना कमाई से कुछ दे दे तो संतुष्ट कर देंगे, यही चाहेंगे और क्या कर सकते हैं, हम भी भगवान को इसे अपना कमाई से कुछ देकर बोल देंगे अपना काम निकाल लेंगे उनसे, उनको इसे खुशी हो जाएगा, भरी तेरी कमाई तेरे बाप का है किसको दे रहे तुम। तो भगवान बोले चलो ना सर आप तो गाड़ी में लोड, हम सब इतने दूर कैसे हैं, आप भी लोड हो जाओ, संपूर्ण देवता संपूर्ण असुरों को गाड़ी में लोड कर दिए, तो बैठ जाओ सारे 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 करोड़ों संख्या में बैठ गए, उनको उठाकर लाके समुद्र किनारे सारे अनलोड किए, अवरोप्य उतारे, ऐसे गाड़ी से सामान उतारते ना, ये श्लोकों कहते उतारे उनको सब, सबसे पहले किसको उतारे, पर्वत को उतारे, गिरिम अवरोप्य गिरिम स्कंधा, पहले डिक्की से ये माल को अनलोड किए, बाद में ये सब देवता असुर अपना उतर गए, उनको लेकर डाउन उतर गए फटाफट सब, उतर के साइड में खड़े हो गए, खड़े होकर अब नहीं बोलते हैं कि समुद्र में डाल, सर आप उठा दीजिए हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम मर जाएंगे हाथ हम नहीं लगाएंगे प्लीज, अरे केशा का पानी तक ले जाइए ना, बाकी हम पानी में तो थोड़ा हिम्मत करेंगे, पानी में इतना डर नहीं समुद्र के अंदर, नहीं समुद्र के किनारे तक सर आप ले जाइए प्लीज। तो भगवान गरुड़ जी को आदेश के बोले, अरे ले लो ये पास में लोड़ करने, पानी के किनारे ले चढ़ा अंते जल अंत जहां पे जल के किनारा यहां तक ले गए। इतने भारी पर्वत को तो डर के मारे बोलते ध्यान ला गए, आप हाथ में आप प्लीज ले चलिए। तो गरुड़ जी ने केवल अनलोड नहीं किए, उतार करके ये पर्वत को ले गए पानी तक, पानी तक ले गए। बोले अब हाँ अब तो सर अब काम कर लेंगे, लेकिन रस्सी रस्सी नहीं आना चाहता। अब समुद्र के अंदर मथानी दंड ले गए लेकिन रस्सी नहीं आना चाहिए, रस्सी तो निर्जीव नहीं वो भी सजीव है, लेकिन वो सजीव वो गाड़ी और रस्सी के साथ संबंध बड़ा खूबसूरत है। गाड़ी अगर इधर पार्क किया वो रस्सी नहीं आ सकता, क्यों? वो रस्सी है गाड़ी का लंच पैकेट। अब क्या कर रस्सी बोलेगा मुझे खा जाएगा वो तो। गाड़ी इधर है हम कभी नहीं जाएंगे, वासु के नाग है वो, सर्प तो गरुड़ जी के भोजन होते हैं। रूपा जी ने एक कमेंट मारे इधर, बोले गरुड़ जी भगवान के महान कैरियर भक्त हैं, लेकिन वो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल कौन सा नियम है? नो मेडिटिंग या नहीं चलता। आप बोलेंगे अरे इतनी सीनियर डिवोटी वो भी नहीं करते रेगुलेटरी प्रिंसिपल, हम क्या करें? देखिए रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम लोग के लिए है, पक्षी के लिए नहीं है। सभी का डिजाइन के लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है उनके स्वभाव। पक्षियों का स्वाभाविक आहार है सर्प मच्छी मीट ईटिंग, उनका स्वाभाविक है। जैसे आप बोलेंगे कि शेर को पकड़ के लाएंगे, बोले तो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल करोगे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता भाई। जिनको भगवान ने जिसके लिए जीव जीवस्य भोजनम, भगवान का सृष्टि का ही व्यवस्था है, सभी प्राणी के लिए अपने अपने धर्म है, भोजन भी अपने धर्म के अनुसार होना चाहिए। हमारे लिए मनुष्यों के लिए भगवान ने सब्जी अनाज दूध और फल फूल विभिन्न प्रकार के सात्विक पदार्थ दिए हैं, तो हम लोग के मीट ईटिंग जीव हत्या करके नहीं खाना। जद्यपि भी ये भी प्राणी है, यही नहीं साग सब्जी उनका भी जीव होता है, हम लोग जीवित है उसको खाना भी दोष है, लेकिन फिर भी वही हम खा सकते हैं। लेकिन हम हमारे लालसा के लिए दूसरे सजीव प्राणी को हत्या करके खाना ठीक नहीं, लेकिन जिनके लिए व्यवस्था है वो करें। तो गरुड़ जी के लिए व्यवस्था था, उनके लिए नियम नहीं था, उन्हें खा सकते हैं सर। और विशेष करके वो पानी में जा करके मछली पकड़ना एक करना धंधा करके सांप को खड़ा करके, क्योंकि दो काम होता है। गरुड़ जी सांप को खाने में भगवान ने बोलते हैं सांप को खाओ, इसमें दो काम क्या होता है? एक तो सांप बड़े बदमाश होते हैं ना, बिना कारण से उन्हें खल कहा जाता। सर्प का गणना दुष्टों में आता है खल के साथ। खल व्यक्ति आप उसे कुछ गड़बड़ी नहीं किया लेकिन आपका गड़बड़ी करेगा, बिना कारण से आपको कष्ट देना चाहेगा। ठीक सर्प भी इसी प्रकार से बिना कारण से देख लिया कोई जाता है, अरे तेरा क्या गड़बड़ी किया, वो जाकर कटेगा उसे। अरे तो खल है, तो खल व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति को विनाश करना भगवान बोले मेरा काम तू ही कर देगा। दुष्ट विनाश करना मेरा एक प्रोजेक्ट होता है, तो दुष्ट विनाश इनको तेरा भोजन में काम हो जाएगा और दुष्ट विनाश हो जाएगा, है ना? तेरे भोजन के लिए अलग क्या व्यवस्था क्यों करूं? तो इसलिए सांप को खाने का व्यवस्था रखे हैं गरुड़ जी के। गरुड़ जी जहां सांप देखे उनका मुख से तो लार टपकेगा, वाह ये लंच है ब्रेकफास्ट है साइज के हिसाब से। तो वासुकी नाग भले कितने महान आग क्यों ना हो, लेकिन उनके ये खाने वाला जो बैठा कैसे आएंगे डर के मतलब, कभी नहीं आएंगे। तो भगवान ये बात को समझ रहे थे। बाकी देवता असुर सोच रहे थे गरुड़ जी थैंक यू सर, धन्यवाद आपने प्लीज इतने लेकर आए, आप खड़े रहेंगे थोड़ा देर, हम कुछ निकलेगा तो आपको दे सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि आप वो अगर गाड़ी पार्किंग में खड़ा रहेंगे तो रस्सी नहीं आ सकता। तो भगवान एक बात जानते थे, बोले वासुकी नहीं आ सकते गरुड़ जी के रहने से। तो उन्होंने गरुड़ जी को बोले आप काम निकाल दिया आप जाओ। गरुड़ जी बोले सर आप इधर खड़े हैं, आपको कोई जरूरत पड़ेगा गाड़ी का मैं इधर खड़े रहूं? बोले नहीं नहीं मुझे तुम पहले जाओ, यह विचार का काम ही नहीं होगा तू खड़े रहने से। तो भगवान उनको बोले आप जाओ ये स्थान छोड़ के चले जाओ, स्थान छोड़ के जाओ समन उतार करके, ताकि उनका सांप आए उनका रस्सी बने। तो इसके लिए भगवान ने गरुड़ जी को स्थान त्याग करके चले जाने के लिए बोले।
वो अगर गाड़ी में बैठकर भगवान भी चले जाते टाटा हो तो वो भी हताश हो जाते, बोले नहीं नहीं सर आप रहिए। जानते भगवान रहने से कभी भी गरुड़ जी भी आ सकते हैं, कुछ ना हो तो भगवान तो ऐसा उंगली पकड़कर उठा के बैठा देते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान रहे, उनके हौसला बढ़ाने के लिए गाड़ी के भेज दिए। तो वासुकी आई और रस्सी बांध करके मथनी दंड में उसको काम हुआ। तो इसमें ये अध्याय में एक के बाद एक श्लोक से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि देखिए ये एक सामान्य काम था, जैसे हम दही मंथन करके माखन निकालते हैं, तो एक समुद्र को मंथन करके इससे कुछ समन निकालना था, अमृत निकालने के लिए प्रोजेक्ट था। तो उसके लिए एक घड़ा दही मंथन कर ले तो एक माता जी कर लेती है, आजकल तो वो भी नहीं स्विच ऑन करके ग्राइंडर लगा देती। तो लेकिन यहां पर हम जैसे नालायक नहीं, संपूर्ण देवता महाशक्तिशाली जो शक्ति संपन्न देवता और महा ऐश्वर्य शक्तिशाली असुर समुदाय संपूर्ण मिल करके शास्त्र केत करने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, एक पर्वत को उखाड़ कर लाना संभव नहीं हो पाया हमसे। मंथन करने के लिए मथानी दंड तक नहीं ला पाए, मंथन क्या करेंगे। पूरे समुदाय शक्ति, ये पूरे जगत में ब्रह्मांड में देवता और असुर वही तो भरे पड़े, उन दोनों शक्ति मिल करके मिलित शक्ति से कर नहीं पाए। हरेक काम में शुरुआत में हम कितने असफलता होते हैं, और कभी कभी सफल हो जाते हैं तो हम बड़े डिंग हांगने चलते हैं, है ना। लेकिन हरेक स्थिति में भगवत अनुकंपा भगवत अनुग्रह का अनिवार्य है, इसमें हम देखते हैं। वो दोनों मिलकर के गए, अब जा करके करने का मर रहे थे, भगवान आए कितने सहज से उठा करके उसे रख दिए। भगवान के वाहन वो भी ऐसे शक्ति भगवान के कारण रखते हैं, भगवान ने किस प्रकार बड़े आसान से कर डालते हैं। तो इस प्रकार हम जब कोई भी काम देवता असुर नहीं करवे, हम तो और कितने निशक्ति है, कितने नीच है। तो कोई भी हम करना काम करना चाहते हैं, अगर भगवान की सहायता लेकर करें तो आसान हो जाएगा। जैसे मंदर पर्वत भी भगवान उठाकर धर भी, जो पूरे समुदाय मिलकर नहीं कर पा रहे थे, बड़ा आसान हो गया। तो इसलिए हमारे कोई कठिन काम भी बड़े सहज सरल हो जाएगा अगर भगवत शरण में हम करें। भगवान को छोड़कर करें तो मरे, यही मर रहे थे हम, कौन सा हम तो इसी मर जाएंगे, हम तो कीड़े मकड़ो ही समझ। देवता लोगों के नजर में तो हम कोई सरीसृप कीड़े भी जैसे नहीं है, इतने नीचे। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या करेंगे। केवल भगवत अनुग्रह से होता है काम। इसी को प्रभुपाद जी ने प्रकृति ही क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। मैं ही करता हूं इस बात को सोचता है कौन, मूढ़ नहीं, मूढ़ माने मूर्ख, विमूढ़ मतलब महामूर्ख, विशेष मूर्ख जो ऐसे सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हो रहा है, कराया जा रहा है। हम नहीं, हमारे जैसे सपड़ों भी नहीं रहे तब भी हो जाएगा काम, कई काम मना ये नहीं रहेगा। ये शिक्षा को लेने के लिए ये बार बार भगवान ने किस प्रकार दिखाते हैं ये सब चीजें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम भगत है, सेवक है, भक्त मतलब हम सेवा करना चाहते हैं, क्या सेवा करूं सर, इतने रोल करके मुख में मीठा डाल करके इतने कहते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल सेवा भावना नहीं है। क्या भावना है, ना मुझे रिस्पेक्ट सम्मान अहंकार पूजा प्रतिष्ठा वही चाहता, इसी के लिए हाथ जोड़ के हम सेवक में सेवा करना चाहता है। सेवा करने की इच्छा नहीं है, इच्छा तो है पोस्ट पोजीशन पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, और इसी के चलते कंपटीशन लड़ाई झगड़ा सब अनंत काल से चल रहा। ये समुद्र मंथन के काम इसी के लिए हुआ था, वो उनके पोस्ट छीन लिए करके, फिर वो उनको कैसे पाएंगे, चक्रांत वही चला। सारे मूल ही होता है सम्मान के चक्कर, हम कैसे बड़े हो जाएं, हम उससे हमको ज्यादा प्रतिष्ठा पूजा सम्मान मिले, पोस्ट पोजिशन के चक्कर। सेवा करना कोई नहीं चाहता, सपने भोग की इच्छा में अपने एक इच्छा में इसी से कर सकते। तो कभी कभी हम देखते हैं सेवा करने के लिए आते हैं, हाँ करने के लिए आते हैं करने के लिए, लेकिन अंदर तो इच्छा है सम्मान पाने का, पूजा पाने का, हम बड़ा का, हम ऐसे किए, हम ऐसे किए इसी की प्रतिष्ठा करने के लिए। और कभी ऐसे नहीं हुआ कि सेवा के चलते गलती तो 50 होता है, कुछ गलती के कारण हमको कुछ सहन करना पड़ा, कुछ देखना पड़ा, कुछ ऐसे कुछ होना पड़ा जाके हमको उठना पड़े, हमारा इज्जत नहीं रहा, हमारा मान नहीं रहा किसी सेवा में। होना नहीं चाहिए, गलती तो हमारा होता भी है, हम केवल अपना विचार रखें इसे नहीं हो सकता। हर एक चीज को अलग अलग विचार से देखा जाए, क्या सही हम निर्णय नहीं कर सकते। किसी कारण से किसी प्रकार विचार से हमारा विचार को ठुकरा गया, हमारा इच्छा को ठुकरा करके काम कराया गया, लेकिन हम इससे इतने क्रोधित हो जाते हैं। क्यों क्रोधित हो जाते हैं? सेवा तो कुछ नहीं किया बैठे थे, लेकिन मेरा मान प्रतिष्ठा का इज्जत नहीं रहा, इस कारण से क्रोधित होते हैं और फिर तो हम नहीं करेंगे। केवल अपना अहंकार को बढ़िया से पोषण करने के लिए, अपने सम्मान पाने की इच्छा को परिपोषण करने के लिए, अपने ईगो को बढ़ावा देने के लिए हम ढोंग करके बैठे हैं। दिखाते हैं बाहर से हम खूब सेवा के नम्र दिखाते हैं, बीच में अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं। कभी कभी भगवान बोलते हैं, रे मूर्ख जीव, ऐसे तेरे कैसे सुधार होगा? करो कुछ सेवा, करो सेवा से मेवा मिलेगा तुझे। सेवा के लिए कभी कुछ सुजोग देते हैं तो हम आकर बोलते हैं, नहीं जी हम नहीं कर पाएंगे, हम इसके लायक नहीं है। अच्छे तरह से जानते हैं कि मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, वो करना चाहता भी हूं, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मेरे मान सम्मान पहले नहीं दिए थे, अभी देंगे कि नहीं? कभी भी कभी हमारा सामने कोई सेवा का सुजोग अगर आता है तो हम खूब नम्र विनम्र बन करके जाके चेंचे करके मना करते हैं, तभी निज खुद को टटोलो कि सचमुच क्या सेवा नहीं करना चाहते आपने? चाहता तो हूं, बहुत चाहता हूं, लेकिन मेरा पोजीशन मेंटेन होगा कि नहीं? पोजीशन मेंटेन हो तो सेवा तो करना चाहता हूं, पोजीशन नहीं रहेगा, मेरा अहंकार के पोषण नहीं होगा तो मैं नहीं करना चाहता। तो सेवा करने की इच्छा नहीं है, क्या इच्छा है अंदर में? अहंकार के पोषण। अगर यह हो जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी नियम तोड़ने के लिए, किसी को अपमान करने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे हमने, क्योंकि हमारा बड़ाई होगा, सम्मान होगा। इसी के लिए अपना मान को दिखाने के लिए, अपने अहंकार ईगो को पालन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। लेकिन कभी कभी भगवान ने यह विशेष सुजोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके अपमान को, आप में ईगो को थोड़ा दमन करो। कैसे दमन करूं? होता ही नहीं प्रभु जी, ये तो बड़े कठिन काम है, कैसे कर पाऊं? अरे हियर इज अ चांस, एक सुजोग है आपके तथा कथित अहंकार सम्मान पाने की इच्छा को साइड में रखो, नम्र हो, विनम्र हो करके जाकर सेवा करो। बोलता है निम्र तो करो, निम्र विनम्र हो करके आपके अहंकार को थोड़ी समय के लिए निकाल कर रखो। अगर रख करके सचमुच करें, थोड़ी समय भी करें अपने अहंकार को हटा करके, तो शुद्धिकरण का शुरुआत हो जाएगा। बहुत कम समय में शुद्ध हो जाएंगे आपने, तब समझ में आएगा, हाय हाय मैं क्या स्थिति में था, मैं कितना बड़ा गड़बड़ी गलती कर रहा था। लेकिन कभी सुधरने का इच्छा ही नहीं है, हमेशा बिगड़ने की इच्छा अंदर बढ़ा पड़ा है। बढ़िया तरीका से बिगड़ने की इच्छा को पालन पोषण करके अंदर रखे हैं और बाहर से ढक्कन दे दे हैं, ऐसे ऐसे बाकी कुछ ये केवल ढोंग है। ये सारे देवता सारे असुर मिल करके ये जो काम करने चाह रहे, इसमें हर स्टेप में हर कदम कदम में विफलता दिखाई जा रहा है। इसलिए क्योंकि अरे मूर्ख, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिना भगवत अनुग्रह से आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए असुरों का मान को मर्दन किया जा रहा है, देवताओं के मान को मर्दन किया जा रहा है, बड़े बड़े जीव जो इतने बड़े भारी शक्तिशाली सब कुछ, उनके सारे मान को भगवान ने मौका देख करके दमन करते हैं और उनको सुधारते हैं। तो हम लोग तो इसे बड़ी नहीं है, कना शक्तिशाली ने कुछ नहीं, सबसे छोटे नीच से नीच है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी बड़ी मान की इच्छा है कि हिसाब किताब नहीं। तो भगवान इसके लिए भी हमको सुधारने के लिए बार बार मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक बार जाओ, एक बार मौके पर अपमानित हो जाए, बेइज्जत हो जाए, तो क्या बिगड़ जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? लोग थोड़ा देर मुंह दिखाते, लेकिन इसी के पीछे कितने बड़े आपका सुधार है। अगर चलो कहीं ऐसी सिचुएशन आ गया, हम अपना सोसाइटी में बड़े प्रतिष्ठा इज्जत रखते हैं, हमारा स्टेटस है, हम जाकर के कहीं छोटे से निम्न कोटि के सेवा हाथ जोड़ के प्रभु जी जैसे बोले, हाँ प्रभु जी मेरा, प्रभु जी जो बोलेंगे हम तो आज्ञा करी सेवक, सचमुच आज्ञा करी सेवक बनकर करो तो सही, तब जो आनंद मिलेगा आपको, जो शांति, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा सेवा से, अभी तक स्वप्न में भी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा। भगवान तो कभी कभी केवल बोलते नहीं, कराते नहीं, करके दिखाते हैं। युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ था, राजसूय यज्ञ में पूरे 3 लोक से अतिथि को इन्वाइट किया गया था, ऐसा नहीं कि केवल हमारे जान पहचान, नहीं, कहां से लोग आए थे, करोड़ों संख्या में लोग थे, उनके सामने सेवा बंटन जब हो रहा था, सेवा बंटन जब हो रहा था तो भगवान भी गए, तो भगवान बोले भगवान के हिसाब से कोई सेवा तो सबसे बड़े पूज्य श्रेष्ठ सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान बोले कि नहीं, यही एक चांस से संपूर्ण समाज के सामने, इतने बड़े गैदरिंग के सामने मैं दिखाऊंगा कैसे सेवा करना होता है, क्योंकि सेवा के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है विनम्रता, अभिमान शून्यता, है ना, नहीं ये अभिमान को त्याग करके कैसे सेवा करना हो, तो भगवान ने मांग करके लिए बोले राजा जी मेरे हिसाब से मैं सेवा हूं ना, प्रभु आप जो चाहे आपके हिसाब से, मेरे मन चाहे सेवा मिलेगा ना, आप जो इच्छा बोलिए क्या सेवा दें आपको, बोले मेरा यही सेवा दीजिए राजा जी, मुझे ये चप्पल स्टैंड का सेवा दीजिए, मैं शू स्टैंड की देखभाल करूंगा, आजकल तो शू स्टैंड वाले खड़ा रहता है पॉलिथिन पकड़ करके, नहीं तो ग्लोव पहनते, तो यही साइड में रख दो इसे। भगवान ने सीधा सीधा जो अतिथि आते थे अपने हाथ से उनके चरण से जूता उतारते थे, वो उसको हाथ से पकड़कर रखते थे, रखने के बाद थोड़ा खड़े रहिए पानी रखते, आपने पैर को धोऊंगा, उनके पद धोना और चप्पल उतारना ये दोनों काम करते थे भगवान ने, वो मांग करके सवाल लिए थे। हमको अगर दिया जाए हैं क्या समझ रहा है, व्हाट डू थिंक ऑफ मी, मुझे इसे सेवा दे रहा है, देखता नहीं मैं कैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, क्या है भगवान से ज्यादा प्रतिष्ठा। भगवान ने मांग करके ऐसे सेवा किए पूरे पब्लिक के सामने, कोई भी अतिथि छोटे से छोटी, मोची भी आए, झाड़ूदार भी आए, राजा भी आए, प्रजा भी आए, सभी के सामने इसी प्रकार सेवा कर, सबके सामने भगवान ने ऐसा किया। और अभिमानी दुर्योधन, उनको भी चांस आया, उनको बोले कौन सा सेवा करोगे तुमने, वो बोला मेरे बने आप हमारे बंधु है, अपने घर वाले हैं, आप बोलो क्या चाहिए। उनका मन में था इच्छा कि बहुत सम्मान पूजा युधिष्ठिर महाराज होता है, ऐसे काम करूं बदनाम हो जाए, कैसे बदनाम, इतने बड़े भारी प्रोजेक्ट लेके खर्चा कर रहा है मैं, अगर फंड तो बहुत ध्यान इतना तो कमाई नहीं है, ऐसे खर्चा करूं बीच में ही धन के अभाव हो जाए, बदनाम हो जाए, इतने लोग बुलाया खिला भी नहीं पाएगा, सब्जी खरीदने के पैसा नहीं होगा, हाँ भोजन भी निकला पाएगा। तो इसी के कारण से दुर्योधन ने जानबूझ करके बोला ऐसे तो मैं राजा हूं, राजोचित कार्य करना चाहता, लेकिन आपके हिसाब से बोलता हूं, मैं इसे हेल्प करना चाहता हूं, मैं राजा हूं ना, हिसाब किताब पेमेंट करना मुझे अच्छा आता है, मुझे ट्रेजर इंचार्ज बना दो, मैं पेमेंट कर, जो रिसीप्ट आएगा, खर्चा भाउचर आएगा, मैं फटाफट पेमेंट करूंगा, जिससे महाराज जैसी इच्छा कीजिए पेमेंट करें। लेकिन उस बुद्धू को पता नहीं था, जब उसका जन्म हुआ था व्यासदेव आदि बड़े बड़े ऋषि आए थे, आकर उनको भिन्न प्रकार के सब वरदान किए थे, इस वरदान के समय में उनके बाएं कंधे पर, दक्षिण कंधे पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे थे, लक्ष्मी वसतु, यहां लक्ष्मी बैठे, आपके हाथ से जितने खर्चा होगा उसका डबल आते रहेगा, लक्ष्मी जी बैठे। ये बेचारा पता नहीं, मां बाप तो अंधे थे, वो तो देखे नहीं थे, ये क्या छोड़ गए, लक्ष्मी के बैठा कर गए थे ऋषि मुनियों ने उनके कंधे में, प्रथम राजकुमार है आप, धृतराष्ट्र जी के पुत्र है, व्यास देव के नाती है, तो ये उनको वरदान दिए थे, उनको बेचारे को पता नहीं। तो वो चाहता था बैठा खजांचे के रूप में जाकर के 10 रुपया के बिल आने से 100 रुपया देता था, और बोले सर हमको 10 रुपया, अरे लेकर जाना बख्शीस, 19 बख्शीस है, कौन छोड़ेगा भाई, दस रुपया का मेरा होता है और गिफ्ट है 90 रुपया। खुश होकर बढ़े रहे सहर सहरसा, बहुत खुश होकर जाता। वो तो सबको खुश करना चाहता चाहता कि जितने जल्दी 10 गुना खर्चा करके खत्म कर दे ट्रेजरी, लेकिन उनको पता नहीं जितने तेजी से खर्चा करता है इतने तेजी से डबल इनकम होता है। वो तो परेशान हो गया, अपने सारे भाइयों को लगभग लगा रखा था, 100 भाई थे केवल अकेले, 100 भाइयों को लगा रखा था पेमेंट इतने ज्यादा से पेमेंट करने के लिए, और कुछ लगा रहा था कि देखो जो इनकम आ रहा है इनकम लेने के लगा था, लेना और खर्चा करना। इनकम लेने के लिए लोग आकर रिपोर्ट देते थे, बोले कोई डिपॉजिट आ रहा है ना, खत्म हो गया, मैं तो इतना खर्चा कर रहा हूं, डिपॉजिट इतना नहीं हुआ ना भैया जी, क्या बताऊं ना क्या ना, मैं तो घोड़ा में चढ़कर गया था देखने के लिए, इतना लंबा लाइन 2 दिन तक गया कंटिन्यूस, रात दिन चलकर गया तब भी लाइन खत्म नहीं हो रहा ना, क्या ना लोग देने के लिए लाइन में खड़े हैं कि महाराज को हम भेंट देना चाहते हैं, हम भेंट देना चाहते हैं। रास्ता में लोग सोते रहते हैं, मेरा चांस लाइन कब आएगा, मैं थोड़ा भेंट देना चाहता हूं महाराज के उत्सव में। युधिष्ठिर महाराज का उत्सव में भेंट देने के लिए लोग कहां से कुछ भी समन लाकर भेंट देना चाहते हैं, इतने लंबी लाइन लगा है। दुशासन बोलता है मैं घोड़े में चढ़कर के कितने दिन दौड़ कर गया, लाइन ही खत्म नहीं हो रहा, हमारा ओवर ड्यूटी चल रहा है भैया जी, रात दिन चले रिसीव करते करते मर गए, वो खत्म ही नहीं हो रहा। हाथ जोड़ बोलते हमारा रिसीव कर लीजिए, हमारा रिसीव कर लीजिए भेंट, हम भाग्य हो जाए सौभाग्य हो जाए। दुर्योधन जल भूल गया, क्या वो इतने खर्चा करते हैं, लोग इतने दान देते हैं, इतने दान देते हैं बिना रिसिप्ट में, बोले रिसिप्ट कर लो बस, रिसिप्ट नहीं चाहिए मुझे, रिसिप्ट ले लो अपने पास ले लो। गुस्से में इतना पड़ता है और जो उनका व्यवस्था भीमसेन ने इंचार्ज था प्रसाद हल का, बड़े कुक थे ना, प्रसाद हल का इंचार्ज भीमसेन थे, तो उन्होंने एक नियम किए थे, बोले कितने लोग आ रहे हैं, पूरे 3 लोग से लोग आए थे तो उनको खान पान के लिए व्यवस्था, बोले कितने ब्याज खाएंगे कैसे खाएंगे तो इसलिए पता चलेगा। बहुत बड़ा बड़ा 10 प्रसाद महल बनाया गया था, बड़ा बड़ा हजारों संख्या में लोग उसमें बैठ सकते हैं, तो एक ब्याज में 10 प्रसाद महल से निकलेंगे मतलब 10,000 लोग एक साथ में एक ब्याज उठेगा। तो भीमसेन ने किए थे, एक ब्याज अगर उठ गए तो उनका शंख बजाएंगे उठाकर, शंख बजेगा तो नेक्स्ट ब्याज रेडी लाने में खड़ा आ जाओ, एक ब्याज खाली होगा बैठे बैठो। जो दुर्योधन पेमेंट करते समय हमेशा कान पाता था कितने ब्याज हो रहे हैं, आज खाना कितने खिला रहे देखते हैं, वो कान पकड़ कर सुना था, स्पीकर लगा रखा था, हमेशा शंख बजता ही जाता था कि बंद ही नहीं होता था, दिन रात हजारों संख्या में लोग खाते थे, कंटिन्यूस खाते ही जाते थे, उसको और जलन होता था। तो केवल ईर्ष्या से जलन के अगर मर जाएंगे सिन्हा कोई लाभ नहीं होगा, कोई नाश होगा, क्यों, क्योंकि अहंकार रखा था, सेवा की भावना नहीं था, उनको सेवा के नाम से उनको दुख देना चाहता था, उनको परेशानी करना चाहता था, सेवा करने की इच्छा था नहीं था, खुद का अहंकार को अभिमान को पोषण करके दूसरे को दुख देना। जब इस प्रकार भाव में अमर करने के जाए सेवा तो सिवाय दुख का सुख तो हो ही नहीं सकता, सफलता हो ही नहीं सकता। अगर सचमुच कभी ऐसा हमको सुजोग मिले, हम अपना तथा कथित मान अभिमान को साइड करके विनम्र हो करके हमारा जथा संभव जथा सत्या की सेवा करें, तो उस सेवा के भले आधा घंटा घंटा एक दिन भी करो, कुछ समय के लिए करो, उस सेवा करके एक बार देखिए, टेस्ट करके आपको किस प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होता है। वो सेवा के सुख, एक बार सेवा के सुख जिससे प्राप्त किया वो अनंत काल तक नहीं भूलेगा, बोलेगा अभी तक तो मर रहा था, असली सुख तो इसी में है। निराभिमान हो करके, अहंकार शून्य हो करके, अमानी हो करके अब एक बार हमने सेवा करे तो वही है हमारे जीवन की सफलता, वही हमारे सेवा की ध्येय है, यही लक्ष्य होना चाहिए। इसी के लिए बार बार भागवत आदि में भगवान ने इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि देखो महा महा शक्तिशाली लोग भी मिल करके हरेक पद पद में फेलियर होते हैं, असफल होते हैं, और हमेशा मेरे कृपा से मेरे सहायता से फिर उनका काम बनता है। तो इसलिए मान लेना चाहिए जान करके कि केवल भगवत अनुग्रह ही सारे सफलता के कारण है, हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने बड़े अपने आप को महाधनुधर मान रहा था, बोले तो बोला मैं किसके साथ लड़ू देखना चाहता हूं, फिर बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ाई बंद हो जाएगा, उसे बच जाएंगे, वो करेंगे रो रहा कर, मैं बाबा जी हो जाऊंगा, लड़ूंगा नहीं। ठीक है तुम्हें लड़ेगा तो मत लड़ो, लेकिन तू नहीं लड़ोगे ये मत समझो कि वो नहीं मरोगे, ये नहीं मरोगे, मरेंगे कैसे? मैं उनका कंप्यूटर, मैं उनका प्रतिपक्ष योद्धा हूं, मैं लड़ाई नहीं करूंगा तो परिशुद्ध नहीं होगा, तो मरेंगे, बच जाएंगे। भगवान बोले नहीं, तू चाहे लड़ या ना लड़, जुद्धू हो ना ना हो, वो तो मर चुके हैं, मर चुके हैं, मेरे सामने खड़े हैं सब धनुष बाण लेकर के, ये तो सब पुतलियां खड़े हैं, मैं कैसे विश्वास करूं? कैसे विश्वास करेंगे? प्रत्यक्ष देख लो, भगवान ने दिखा दिए, वही ड्राइवर सीट में खड़े होकर दिखा दिए। बोले पहनो चश्मा, देखो, चश्मा पहनकर देख लिया, अरे बाप रे बाप, महा महावीर भीष्म द्रोण कर्ण शल्य दुर्योधन दुशासन, ग्राइंडिंग हो रहा है उनका, ग्राइंडिंग मशीन लगा है, भगवान के मुख ग्राइंडिंग मशीन है, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अर्जुन तो उनको देख करके थर 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 कांप गए अपने सीट पर खड़े होकर के। वो ड्राइवर के सामने इसे कंपकंपी मच गया उनका, बोले सार सार आप है कौन, बताइए, आप मेरे ड्राइवर है, मैं तो आपको मेरा दोस्त समझा, प्लीज बताओ आप कौन है, आप कौन है करके डर के मारे पूछे। भगवान बोले अब बताओ मैं कौन ना प्लीज। भगवान बोले मैं काल हूं, कालो हम, आप यहां क्या कर रहे हैं, मेरे गाड़ी में आप क्यों खड़े हैं, क्या यहां क्या कर रहे हैं, काल आप जाइए ना, आप काम यहां क्यों है भाई। कालो अस्मी लोक प्रबुद्धो, मैं काल बनकर आया हूं आपके पास सारे लोगों को सफाया करने के, खैर करने के लिए। हाँ देख रहा ना, सबको मार चुका हूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है, तू मेरे साथी है, उत्तिष्ठ जसो नभस्व, उठकर खड़ा हो, क्रेडिट लो, बस कुछ नहीं करना है, केवल मेरे साथ में खड़ा होने से सम्मान मिलेगा, खूब खूब इज्जत मिलेगा, खूब क्रेडिट मिलेगा, एक बार ये टेस्ट करो। अर्जुन के भगवान ने पहले से बता दिया तू क्या लड़ोगे, ये जो महाधनुधर युद्ध विजयी अर्जुन तक कहा जाएगा, ये तो मैं पहले से पोस्ट दे रहा, तू ले लो पहले से, मेरे बात मान लो, पोस्ट दे लीजिए, कितने सम्मान चाहिए, इससे ज्यादा मैं दे दूंगा तुझे, बिन लड़े लड़ाई से पहले दे दिया सम्मान, और क्या चाहिए। अर्जुन मान गए, बोले माय गॉड, ये पहले से मार मार चुके मुझे, केवल कटना, बोले मैं क्यों छोड़ू, मैं जो लड़ू ना लड़ू उसे मरेंगे, तो बेटर कि आपका आज्ञा पालन करूं, क्रेडिट तो मिलेगा, है ना। तो किसी भी प्रकार से ले दे करके हम कितने दुखी होते हैं, कितने संतप्त होते हैं, कितने परेशानी होते हैं, सेवा ना करके मर रहे हैं, सेवा करके मर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं रूढ़ कच क्या है। रूढ़ कच है हमारा अहंकार, हमारा ईगो को हर प्रकार से हम पालन पोषण करके रखना चाहते हैं, यही हमारे जो टेंशन के कारण है, दुख के कारण है। एक बार उसको हटाकर साइड रख दो, भले साले लोग अब नीचे चिकना, अरे आप ये काम करते हैं, कहने दो ना, ये कहने के एक बार सहन करने के बाद में जो आनंद आता है, ये आनंद अभी तक हम टेस्ट ही नहीं किए। एक बार वो कहने दो, अरे आप ये काम कर रहे हैं, ऐसे हो गए, इसको एक बार सहन कर लो, उसका पीछे कितने आनंद है, कितने सुख है, अनुमान नहीं, अकल्पनीय सुख है उसका पीछे। लेकिन हम इसको सज्जे नहीं कर पाएंगे, मेरे इस लोग बोलेंगे पहले शाम नहीं करेंगे, अरे एक बार फेस करके तो देखो कितने सुख की बात वहां। इसीलिए भगवान कभी के मौके पर करके दिखाते हैं, भगवान से बढ़कर कोई सम्मानीय, कोई पूज्य, कोई इज्जत वाले व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते, है ना, संभव ही नहीं। मत परतरंग नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कोई हो नहीं सकता, लेकिन वो भी जगह आकर के ऐसा करते हैं, तो इसीलिए भगवान कहते मैं भी ऐसा करता हूं, जो मेरे होना चाहते हैं उनको मेरे से ऐसे ही होना पड़ेगा, ऐसे। इसलिए बोलेंगे हम तो भगत बनेंगे, लेकिन पीछे पीछे हम सम्मान, हम थोड़ा सार सार सब करें, सब हमको सम्मान करें, नहीं 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 नहीं। अगर तो भजन करना चाहते हो, सबसे पहले तीर्ण से भी अधिक नीच होना पड़ेगा, मैं नीच बनूंगा, भजन करने जाऊंगा नीच होना पड़ेगा, सबसे पहले नीच बनना पड़ेगा, तो लेकर का इसे नीच देखा, हाँ नीच बिना भजन नहीं हो सकता, कितना नीच होना पड़ेगा, तीर्ण से भी ज्यादा, ओ माय गॉड, टू मच। चलो इसे काम चलाने के कंग्रेशन में काम चलाऊंगा, लेकिन सही सच नहीं हो पाऊंगा इतने ज्यादा, केवल नीच नहीं सहिष्णु भी होना पड़ेगा, वो भी और मान तो बिल्कुल इच्छा ना करो, हो फिर करो क्या ना, केवल सम्मान देना सीखो, ओह मेरे से नहीं मांग सकता तो भजन नहीं कर सकता, भजन में तब नहीं हो सकता। अगर तू भजन सचमुच करना चाहते हो, पहले ये तीन कंडीशन भगवान रखे, तृणादपि सुनीचे न करो रिव सहिष्णुना अमानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर सदा हरि कीर्तन करना चाहते हो, सचमुच चाहते हो, तब पहले जो प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट उसको तो पूरा करो। तो इसलिए अगर हम अपने आप को सेवक कहना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो एक बार भी कभी जानबूझ करके हमारे तथा कथित सम्मान इज्जत रेस्पेक्ट स्टेटस को निकाल करके, अहंकार अभिमान को निकाल कर कचड़ा में फेंको, घंटे आधे घंटे के लिए अगर सेवा करके देखो, 50 लोग का आपको मुंह में इसे करके देखे, उसको सहन करो, फिर देखो क्या होता है आपका। इससे हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो कभी हम महसूस अब तक किए ही नहीं है। हरे कृष्ण।